किसी की तवज्जो से नहीं होती, सिर्फ तमन्ना है। इस्लाह की सिर्फ तमन्ना है, हवस है। ये इस्लाह चाहता नहीं, इसलिए कि इस्लाह के लिए तो हिम्मत चाहिए। और अगर अपनी इस्लाह के लिए हिम्मत नहीं करता तो ये निरीह हवस है और तमन्ना है। शेख, मुरब्बी, ये तो महज मुहर्रिक हैं, आपके अंदर तहरीक पैदा करते हैं कि मैं हिम्मत करो। मियां हिम्मत करो। शेख तो महज मुहर्रिक हैं, आपके अंदर तहरीक पैदा करते हैं, मियां हिम्मत करो। हिम्मत तो खुद ही पैदा करनी होगी, हिम्मत तो खुद ही करनी होगी। मैं बुजुर्गों की सोबत में जाता हूं, मैं फलां मजलिस में जाता हूं, अच्छी बात है, लेकिन मियां इस्लाह के लिए तो खुद हिम्मत भी करनी होगी। हिम्मत भी करनी होगी। खाना पड़ा हुआ है, रोज खाने के पास बैठता हूं, पेट भर जाएगा, खुशबू भी आएगी, चाहत भी पैदा होगी, लेकिन मियां अंदर लेने के लिए तो हिम्मत करनी होगी ना, हाथ बढ़ाना होगा, लुकमा लेना होगा, मुंह में डालना होगा, चबाना होगा, निगलना होगा, या मांस खाने के पास बैठने से आदमी का पेट भर जाएगा। ठीक है, सामने बैठने से आपके अंदर एक चाहत पैदा हो रही है, खुशबू आ रही है, जायका महसूस हो रहा है, रंगत अच्छी है, रगबत बढ़ रही है, सब ठीक है, लेकिन पेट तो नहीं भरेगा ना। पेट तो भरने के लिए हिम्मत करनी होगी। सही है, बुजुर्गों की सोबत में जाता हूं, अच्छी मजलिस में जाता हूं, लेकिन मियां इस्लाह के लिए तो हिम्मत करनी होगी ना। शेख और बुजुर्ग और मुरब्बी तो मुहर्रिक होते हैं, उससे एक शौक सा पैदा होता है, लेकिन बदनजरी करने के लिए तो हिम्मत करनी होगी। बदनजरी से हिफाजत के लिए तो हिम्मत करनी हो। रोजाना तिलावत के मामूल के लिए तो हिम्मत करनी होगी, वो तो खुद बहुत नहीं होगी, मुसीबत यही है। चाहते भी हैं इस्लाह हो और मैं हिम्मत भी नहीं कर रहा, तो वो तो भाई हवस है, निरी तमन्ना है। खाने के पास रोज बैठ जाए, मेरा पेट भर जाए, तो बताइए महाज खाने के पास बैठने से पेट भर जाएगा? वो तो हवस है, वो तो भैया हिम्मत करेगा, कोशिश करेगा, फिर पेट भरेगा। फरमा इस्लाह बिदून हिम्मत के किसी की तवज्जो से नहीं होती, ये महज तमन्ना है। शेख मुरब्बी तो महज एक वास्ता, एक मुहर्रिक होता है, हिम्मत तो खुद करनी होगी, और जो जितनी हिम्मत करेगा इतना उसे तरबियत का नूर मिलेगा, इतनी उसे इस्लाह होगी, हिम्मत खुद करनी होगी। चश्मे के पास बैठा हुआ है, रोज जाके चश्मे के पास बैठ जाता, बताइए सैराब हो जाएगा? मैं रोज चश्मे के पास बैठता हूं, प्यास नहीं बुझती। अरे भैया प्यास तब बुझेगी ना जब हिम्मत करोगे तो। मैं अच्छी मजलिस में जाता हूं, बुजुर्गों से मेरा बड़ा ताल्लुक है, इसलाह नहीं हो रही। अरे भैया इसलाह की तो हिम्मत चाहिए ना है? मैं रोज चश्मे के पास जाके बैठ जाऊं और फिर शिकायत क्या करूं, शराब नहीं हो रहा। अरे भैया शराब होने के लिए तो हिम्मत करनी पड़ेगी, लोटा लेना पड़ेगा, गिलास लेना पड़ेगा, पानी चश्मे से लेना पड़ेगा, मुंह में डालना पड़ेगा। अब शिकायत करे रोज चश्मे के पास जाता हूं, इतना अच्छा पानी, इतना मीठा, लेकिन शराब नहीं होता है? मैं मजलिस में जा रहा हूं, काफी अरसे से जा रहा हूं, बुजुर्गों के पास भी मिलता हूं, मेरा बुजुर्गों से बड़ा ताल्लुक भी है, इसलाह नहीं हो रही। अरे भैया इसलाह की तो हिम्मत चाहिए। बुजुर्ग तो सिर्फ आपके अंदर तहरीक पैदा करेगा ना भाई, मियां हिम्मत कर लो। हिम्मत करोगे तो फायदा होगा, वो तो यही कर सकते हैं। हिम्मत तो खुद करनी होगी, वरना आदमी कहता है मैं तो खानकाह में 20 साल से रह रहा हूं। तो मियां ऐसा ही जैसे चश्मे के पास 20 साल से बैठा रहे, शराब तो नहीं होगा। शराब तो तब होगा पानी से भाई, सिर्फ चश्मे के पास बैठने से नहीं, हिम्मत भी करनी होगी। तो दीन के मजलिस में सिर्फ आने से आना काफी नहीं, हिम्मत भी करनी होगी इस इस्लाह की, तब ये बुरी आदतें छूटेगी। हम कह रहे एक आदमी रोज चश्मे के पास जाके बैठ जाए, एक हफ्ते तक जाके चश्मे के पास बैठता रहे और फिर शिकायत करने लग जाए कि भाई मैं तो शराबी नहीं होता चश्मे से, प्यास तो वैसी की वैसी है, तो क्या कहा जाएगा? मियां हिम्मत करके पानी लो ना, मुंह में डालो। हम भी यही है, कई सालों से हम मजलिस में आते हैं, इसलाह नहीं होती। तो मियां इसलाह तो हिम्मत से होगी ना है? इतने अरसों से मैं मजलिस में आता हूं, फजर की नमाज का एहतमाम नहीं हो रहा अब तक, सुभान अल्लाह। तो कैसे होगा? सिर्फ चश्मे के पास बैठने से तो पानी पेट में नहीं आता ना भाई, रोज देगों के अंदर जाके बैठ जाए, दाएं बाएं हर तरफ देगे हो और फिर शिकायत करे पेट नहीं भरता। अरे पेट भरने के लिए तो हिम्मत करनी होगी ना भैया, सालन निकालना होगा, रोटी उठानी होगी, चबाना होगा, पेट में तब जाएगा। नहीं मैं रोज देखो के दरमियान बैठ जाता हूं। ऐसी मेरे अजीजो अच्छी मजलिस में आना मुबारक, दीन की मजलिसों में जाना मुबारक, अल्लाह के नेक बंदों से ताल्लुक रखना मुबारक, लेकिन इस्लाह की तो हिम्मत करनी होगी ना भाई। बुजुर्ग आदमी, नेक आदमी, शेख मुरब्बी तो आपके अंदर तहरीक पैदा कर सकता है ना, हिम्मत तो खुद करनी होगी। हिम्मत नहीं कर रहा मैं और फिर कह रहा हूं बस खुद बखुद कोई इसलाह हो जाए है? और आता भी है यार इसलाह नहीं हो रही बस है? अब तक बदनजरी नहीं गई है? अभी तक फजर का एहतमाम शुरू नहीं हुआ, तिलावत का मामूल नहीं बना। अरे कब से मैं जा रहा हूं? तो ये ऐसा ही है देगों के दरमियान रोज बैठ जाए और फिर शिकायत करने लग जाए कि पेट नहीं भरा, चश्मे के पास रोज जाके बैठ के आ जाए घंटा और फिर कहे मियां पेट शराब नहीं हुआ। शराब नहीं हुआ तो शराब होने के लिए भाई, तरबियत के लिए तो भाई हिम्मत करनी पड़ती है। जो जितनी हिम्मत करेगा उसे तरबियत का नूर मिलेगा, उसको नूर मिलेगा। हाँ अच्छी मजलिस से ये जरूर फायदा होता है, ये जरूर फायदा होता है, कम से कम किसी दिल के किसी खाने में, दिमाग अकल के किसी खाने में अपनी बुराइयों का एहसास हो जाता, अपनी कमियों का एहसास हो जाता, अपनी गलतियों का एहसास हो जाता, ये उस मजलिस का फायदा है। लेकिन इस्लाह के लिए तो हिम्मत करनी पड़ेगी, बुराइयों को छोड़ने के लिए तो हिम्मत करनी पड़ेगी ना भाई। चलो डॉक्टरों के पास गया, मेरी तशखीस हो गई, कम से कम ये हुआ कि मुझे पता लगा कि मरज क्या है। हाँ तो भाई ठीक है, मरज पता लग गया तो अब इस कैंसर को निकालना भी तो होगा। क्या वो सिर्फ मालूमात होने से कैंसर खत्म हो जाएगा? अब वो निकालना भी पड़ेगा ना, और उस निकालने के लिए हिम्मत करनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे पता लग गया कि मेरे अंदर ये गंदी आदत है, ये बुरी आदत है, ये अल्लाह की नाफरमानी है, एहसास हो गया, लेकिन इस गुनाह के कैंसर को निकालने के लिए हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना। हिम्मत करेगा इसका नूर मिलेगा, वरना मालूमात भी हैं, पता भी है कैंसर है, लेकिन हिम्मत नहीं कर रहा कैंसर निकालने का, तो बताइए कैंसर रुक जाएगा? उसको जहर फैलेगा ना, उसका तो जहर फैलेगा। अब आता है, बयान सुनता है, मजलिस में बैठता है, हराम नहीं छोड़ता, तो क्या मतलब है? क्या उस हराम का जहर नहीं फैलेगा जिंदगी में? क्या उसकी नहुसत घर में नहीं आएगी? वो तो आएगी, उसके असरात तो होंगे। उस गुनाह के कैंसर को निकालने के लिए तो हिम्मत करनी पड़ेगी ना भाई। मोबाइल को गलत इस्तेमाल करने की आदत है? अब इस बुरी आदत को रोकने के लिए तो हिम्मत करनी पड़ेगी ना भाई, वरना उसका जहर का असर तो होगा, वरना उसका रिएक्शन तो होगा। बाज मजलिस में आना तो काफी नहीं, ये मुसीबत। हिम्मत नहीं कर रहा आज मुसलमान, जिनको थोड़ा बहुत एहसास भी है। फरमा इस्लाह बिदून हिम्मत के किसी की तवज्जो से नहीं होती भाई, ये निरी तमन्ना है और निरी हवस है। मुरब्बी और शेख तो महज वास्ता और मुहर्रिक हैं, वो तो आपके अंदर तहरीक पैदा करते हैं। भैया हिम्मत करो, बस हिम्मत तो खुद करनी हो। अगर किसी बददीन की अदावत तौबा के बाद मोहब्बत से बदल जाए, बेदीन आदमी था और उसकी बेदीनी की वजह से उससे अदावत था, उसकी जात से नहीं, उसकी बेदीनी की वजह से उससे अदावत था, उसने तौबा कर ली। अब ये अदावत मोहब्बत से बदल दी तो समझ जाना चाहिए ये अदावत भी अल्लाह की खातिर थी, न के तकब्बुर की वजह से, न के तकब्बुर की वजह से, न के उजुब की वजह से। किसी बेदीन से अदावत थी, तौबा कर ली उसने और उससे मोहब्बत हो गई, तो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि ये अदावत भी किसके लिए थी भाई? अल्लाह की। और अल्लाह के लिए अदावत रखना और अल्लाह के लिए मोहब्बत करना ये कमाल है ईमान। अल्लाह के लिए अदावत करना, अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करना ये कमाल है ईमान। मन अहब्बा लिल्लाह وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان كمال الايمان محبت بھی اللہ کے لیے عداوت بھی اللہ کے لیے دینا بھی اللہ کے لیے اور کہیں ہاتھ روک رہا ہے اللہ کی خاطر کمال ایمان اللہ کے لیے اس کی ذات سے نہیں تھی اپنی نفسانیت کی وجہ سے نہیں تھی اپنے نفس کی وجہ سے نہیں تھی اللہ کے لیے اب اس کے اندر وہ برائی نہیں رہی اور بے دینی نہیں رہی اب اس سے محبت ہو گئی اس سے تعلق ہو گیا بڑی بات ورنہ تو آج جو ہے بغض اور نفرت کی پتہ نہیں کیا کیا وجوہات ہیں اگر نہیں ہے تو اللہ کی خاطر نہیں اللہ کی خاطر نہیں فرمایا اگر تلاوت قرآن سے اتنی دلچسپی ہو کہ تمام اوراد بھی ترک ہو جائیں تو حصول مقصود کے لیے معین ہوگا. سبحان بعض لوگوں کو قرآن کی تلاوت سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے دیگر نفلی اوراد نہیں ہو رہے ہوتے ورد نہیں ہو رہے ہوتے تسبیحات نہیں ہو رہی ہوتی تلاوت ہو رہی ہوتی فرمایا مقصود حاصل کرنے میں یہی چیز مددگار ہو مقصود تو کیا ہے اللہ تعالیٰ کو پا لینا اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ تعالیٰ سے تعلق مقصود تو یہ ہے نا تو فرمایا اگر کسی کو تلاوت قرآن سے دلچسپی ہے اور اسی میں وقت زیادہ صرف ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اوراد نہیں ہو پاتے تو مقصود حاصل کرنے میں یہ چیز بھی کیا ہے بڑی معین ہے. افضل ذکر ہے کلام اللہ اللہ تعالیٰ کے اندر سے نکلا ہوا نور ٹھیک ہے نا مقصود حاصل ہو جائے مخالفین کی شرارت سے بے چین ہونا مخالفین کی شرارت سے بے چین ہونا یہ اخلاص کے منافی نہیں امر طبعی ہے انسانی طبیعت ہے کہ جب مخالفین کی شرارت ہوتی تو آدمی کی طبیعت میں الجھن ہوتی تو طبیعی یہ کوئی بزرگی کے خلاف نہیں ٹھیک ہے نا یہ بزرگی کے خلاف امر طبیعی جیسے بخار ہوتا تو ہاتھ گرم ہوتا ہے نا بھائی ہیں ہاتھ گرم ہوتا ہے تو اسی طرح یہ امر طبیعی ہے انسانی طبیعت ہے جب کوئی مخالفین شرارت کریں گے تو طبیعت میں کیا ہوگا الجھن تو ہوگی وقتی طور پہ الجھن تو ہوگی یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے جہاں نشکری یہ ہے کہ آدمی نعمتوں میں اللہ کی نافرمانی کرے جہاں یہ نشکری ہے کہ آدمی اللہ کی نعمتوں میں اللہ تعالی کی نافرمانی کرے یہ نشکری ہے وہاں نعمتوں کا ترک بھی نشکری اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے رہا ہے بلا وجہ اسے چھوڑ رہا ہے کھانا مل گیا اچھا سا ٹھیک ہے نا نہیں نہیں ये बुजुर्गी के खिलाफ है, उसमें कच्चा पानी डाल दिया, अब खाऊंगा है, ये नशुकरी। अच्छा खासा कौरमा बना हुआ है, उसको बद जायका करने के लिए कुछ और मिला दिया, ये नशुकरी है। जब अल्लाह ताला सहूलत के साथ, इज्जत के साथ, हलाल तरीके से कोई नेमत दे रहा है मियां, तो बिला वजह उसे छोड़ देना, जाया करना, ये भी नशुकरी। जिस तरह अल्लाह की नेमतों में अल्लाह की नाफरमानी, ये नेमतों की नशुकरी है, इसी तरह तर्क की नेमत भी नशुकरी। बिला वजह नेमत को छोड़ देना, जाया कर देना, ठीक है, ताजा रोटी मिली, नहीं 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 इसको मैं ना कल खाऊंगा, ठीक है ना, कल खाऊंगा, ठीक है ना, इससे नफ्स मोटा होगा इसलिए मैं कल खाऊंगा, ये कोई बुजुर्गी नहीं, ठीक है ना, ये बुजुर्गी है। उस नेमत को इस्तेमाल करो और दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ऐ अल्लाह मेरी तो ये औकात नहीं थी, आपने अता फरमा दी, मेरी तो ये औकात नहीं थी, आपने नवाज दिया, इसमें मेरी तो कोई लियाकत नहीं है, बस आपका फजल हो गया, ये बुजुर्गी है, ये बुजुर्गी। तो जिस तरह नेमतों में अल्लाह की नाफरमानी नशुकरी है, ऐसी ही तर्क नेमत भी नशुकरी, तर्क नेमत भी नशुकरी। इस जमाने में किल्लत मुजाहिदे पर वही दौलत नसीब होती है जो सल्फ को मुजाहिदा अजीम पर मुयस्सर होती थी। अल्लाह ताला भी जमाने की रियायत फरमाते हैं, अल्लाह ताला भी इस्तेदाद की रियायत फरमाते हैं, अल्लाह ताला भी आदमी की कुव्वत और ताकत की रियायत फरमाते हैं। जमाना ऐसा है, अब वैसी सेहतें नहीं हैं, वैसे आसाब में ताकत नहीं है, वैसी हिम्मतें नहीं हैं, तो अगर नियत थोड़ा सा मुजाहिदा भी करोगे तो जो पहले लोग मुजाहिदा अजीम किया करते थे और उन्हें उस पर नूर मिलता था, आपको इस थोड़े से मुजाहिदे पर भी वो नूर मिल जाए, लेकिन कुछ तो कर ले ना भाई, कुछ तो कर ले। अल्लाह ताला के हां ये रियायत मौजूद है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रियायत की बशारत दी है। थोड़ा सा तो मुजाहिदा हो, फरमा इस जमाने में किल्लत मुजाहिदा पर भी वही दौलत नसीब होती है जो सल्फ को मुजाहिदा अजीम पर मुयस्सर होते। बड़े मुजाहिदे करने पड़ो, बड़ी बड़ी मुशक्कतें उठानी पड़ती, थोड़ी सी नफ्स के खिलाफ, ठीक है ना। अब दायर आदमी जब मामूलात पे पाबंदी करेगा, हाँ तो मुजाहिदा तो है, रोज तिलावत है, आसान तो नहीं, हिम्मत करके नजरों की हिफाजत, जबान की हिफाजत, बड़ा मुजाहिदा है। लेकिन जो आदमी ये थोड़ा सा मुजाहिदा भी करेगा इंशाल्लाह, उसे नूर मिले, उसे बड़ा नूर मिले, अलग ही गुनाह इसी बच रहा है, कौन सी नफली इबादत के लिए बड़ा मुजाहिदा कर रहा है, ये तो फर्ज है बचना, लेकिन इस पर भी नूर मिले। फरमाया किसी सोहबत में اور کسی مربی کی زیارت سے سکون ہونا یہ علامت ہے کہ ان سے مناسبت ہے اور یہ مفتاح سعادت ہے. کسی صحبت میں اور کسی کے پاس بیٹھنے سے سکون ملتا ہو تو یہ علامت ہے کہ مناسبت موجود ہے اور یہ سعادت کی چابی ہے, مفتاح سعادت ہے. ٹھیک ہے, وہاں بیٹھ کے سکون ملتا, اطمینان ہوتا. یہ علامت ہے کہ مناسبت ہے. لیکن تربیت کے لیے صرف مناسبت کافی نہیں, اصلاح کے لیے صرف مناسبت کافی نہیں. کیا کرنا پڑے گا؟ ہمت کرنی پڑے گی, ہمت تو کرنی پڑے گی. یہ مناسبت کی علامت ہے کہ اس مجلس میں جا کر زیارت کر کے پاس بیٹھنے سے سکون ملتا ہے, ٹھہراؤ آتا ہے. لیکن تربیت اور تزکیہ کے لیے تو ہمت کرنی پڑے گی, نسخے پہ نسخے کو استعمال کرنا پڑے گا, نسخے کو استعمال کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, صرف نسخے کو دیکھ کر روزانہ جیب سے نکال کر اچھا نسخہ ہے کام ہو جائے گا, صحت مل جائے گی. ہمت کر کے استعمال کرنا پڑے گا, پھر اصلاح ہوگی اور پھر جو ہے روحانی مرض ختم ہوگا. فرمایا آپ کو ہم بتاتے ہیں توکل اور یقین ایک ایسی دولت ہے جس خوش نصیب کو حاصل ہو جائے اس کو پھر کبھی پریشانی نہیں رہتی. جس خوش نصیب کو اللہ تعالی کی ذات پر توکل اور یقین نصیب ہو جائے یہ وہ دولت ہے, پھر اسے کوئی پریشانی نہیں رہتی. ایک ہے پریشانی نہیں رہنا اور ایک ہے پریشانی نہ آنا, دونوں میں فرق ہے. بیماری تو آئے گی, پریشانی بھی آئے گی, تکلیف بھی آئے گی, تو پیغمبر پر بھی آئی, وہ تو ولی پر بھی آئی. آئے گی تو صحیح, لیکن توکل اور یقین کی دولت کی وجہ سے یہ پریشان رہے گا نہیں, اس کی زندگی میں پریشانی رہے گی نہیں. یہ فرق ہے, یقین اور توکل کی وجہ سے عجیب دولت. یقین جانیے دین کی یہ خوبیاں اور دین کی یہ صفات ایسی زبردست ہیں جس سے دنیا کی زندگی بھی بڑی خوشگوار ہوتی, دنیا کی زندگی بھی بڑی خوشگوار ہوتی. آپ لکھ لیں وہ اسے, اور یہ بات پتھر پہ لکیر ہے, جن کی زندگیوں میں یقین نہیں آپ ان کی زندگیوں میں دیکھیں گے پریشانیوں سے بھری ہوئی, بے سکونی سے بھری ہوئی, بے چینی سے بھری ہوئی, اندر کی ایک جلن, ایک دکھ, ایک درد, ایک غم ان کی زندگی کو اندر ہی اندر سے کھائے جا رہا. نہ دیکھیں اس کی شہرت کو, اس کے پروٹوکول کو, نہ دیکھیں اس کے جسے کہیں گے چرچوں کو, سب دھوکا ہے. آپ دیکھیں گے اس کے چہرے پہ خوشی کی مسکراہٹ بھی نہیں آتی, آپ نہیں سوچ سکتے اس کے اندر کتنا غم ہے. لیکن سبحان اللہ, اگر یہ دین کی خوبیاں آ جائیں, یقین توکل, اس کی زندگی میں پریشان غم نہیں رہتا, پریشانی نہیں رہتی. آتا ہے, رہتا نہیں, رہتا نہیں. جس شخص کو خدا تعالی نے توکل اور یقین کی دولت عطا فرمائی ہے اس کو کبھی پریشانی نہیں ہوتی, اس کو کبھی پریشانی نہیں, بس اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے بس. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, ایمان والے تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں, اللہ کے وعدوں پہ یقین ہے کہ اس تکلیف پہ انعام ملے گا, اس بیماری پہ انعام ملے گا, اس ازمائش پہ انعام ملے گا, اس مصیبت پہ انعام ملے گا. جب اسے یقین ہے تو پھر تکلیف تکلیف کہاں رہے گی, پھر پریشانی پریشانی کہاں رہے گی. توکل اور یقین ایسی دولت, اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے, اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک, اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله ونتوب إليه, نستغفر الله ونتوب إليه, نستغفر الله ونتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله.